हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, यानी उसमें तीन चार चीज़ें हैं। अचिंत्य यानी क्या, समझने के लिए मुश्किल। अचिंत्य यानी उसको हम लोग आकलन नहीं कर सकते, इतना डिफिकल्ट है समझने के लिए। भेद मतलब क्या, डिफरेंस। तो भाई आपको मालूम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब क्या है? लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व पता होना ये कोई PhD की बात नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व हमारा ABCD है। अगर हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में संलग्न है और संलग्न होना चाहते हैं तो ये सबसे पहला ABCD है। जैसे हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा हैं, ये कैसा बेसिक है, ये वैसे ही ये पता होना चाहिए कि हमारा सिद्धांत क्या है। तो हमारे सिद्धांत में जो बाकी सिद्धांत अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल हैं वो क्या है, एक तो है मायावाद। मायावाद के पहले क्या है, शून्यवाद। मतलब सब कुछ ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है और सब कुछ ज़ीरो में जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, सब एक बड़ा ज़ीरो है, शून्यवाद। तो वो बुद्ध भगवान ने बताया शून्यवाद, निर्वाण। आप एक शून्य हो, आपको शून्य ही बनना है और सब शून्यों को मिलकर एक बड़ा शून्य बनना है, ये सिद्धांत है वो। उसके बाद में शंकराचार्य जी आए, उन्होंने बताया मायावाद। मतलब उन्होंने बताया कि भगवान की माया शक्ति जो है ना वो बहुत पावरफुल है। तो भगवान को उन्होंने बताया भगवान है करके, लेकिन भगवान के माया शक्ति को ज़्यादा प्रधानता दिया और बताया कि वो माया इतनी पावरफुल है कि आप सब लोग भी भगवान हैं, लेकिन माया के प्रभाव में आ गए इसलिए मायावाद हो गया। मतलब माया इतनी प्रभावी है कि आपको कवर कर दिया उसने, और साधना करेंगे और माया के बाहर आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप ही भगवान हो। तो वो सब भगवान मिलकर एक भगवान में लीन हो जाएंगे, ये हो गया मायावाद। उसको कहते हैं अभेद कहते हैं उसको। अभेद यानी भेद नहीं तुम्हारे भगवान के अंदर कुछ, समझ में आया आपको? आपके और भगवान के अंदर कोई भेद नहीं है, आप ही भगवान, सब भगवान है, एवरीबडी इज भगवान, सब कण कण में भगवान है। तो जब ये भूले भटके भगवान को याद आएगा कि मैं भगवान हूँ तो भगवान में एक रूप हो जाएगा। तो जैसे हम मैं और गिरिराज प्रभु जब वो आश्रम में गए थे ना उत्तरकाशी में, तो महाराज जी वहाँ पर थे, अच्छे बहुत अच्छे महाराज जी। तो उन्होंने आते ही गिरिराज प्रभु को ऐसा वेलकम किया, अरे, और राधा कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ पर, उनके आश्रम में राधा कृष्ण का विग्रह है। बोलते अरे आप यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, भली लीला आपकी है, अद्भुत लीला है आपकी, अरे भगवान आप यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो। एक चीज़ है कि मैं आप में भगवान को देख रहा हूँ, आपके अंदर भगवान को देख रहा हूँ, इसके अंदर देख रहा हूँ, कुत्ता बिल्ली में देख रहा हूँ, चिपकली में देख रहा हूँ, कॉकरोच में देख रहा हूँ, और एक मैं आपको ही भगवान समझ रहा हूँ, इसमें अंतर है कि नहीं? आपके अंदर भगवान को देखना और आपको ही भगवान समझना, इसमें बहुत अंतर है। तो मायावाद वो है कि वो आपको ही भगवान समझते हैं, सब मैं ही, वो पर्वत भी मैं हूँ, फिजा भी मैं हूँ, वादा सब वादियाँ भी मैं हूँ, ना आकाश भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सब मुझे एक रूपत्व मालूम पड़ता है। जैसे मैं रियलाइज होता हूँ ना, माया से मुक्त होता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये सब कुछ मैं हूँ। और मैं अभी अंतिम था, वो जो बड़ा मैं है उसके अंदर जाऊँगा, एक रूप हो जाऊँगा। तो ये हो गया अभेद, मतलब भेद नहीं उसके अंदर। फिर उसको रामानुजाचार्य आए, उन्हें बताया कि नहीं, आप और भगवान एक नहीं हो सकते, वो दो ही रहेंगे हमेशा, और दो होंगे तो ही भक्ति होगी। तो द्वैत, द्वैत यानी भेद। और फिर मध्वाचार्य आए, फिर उन्हें विशिष्ट द्वैत सिखाया, उन्होंने बताया कि दो हमेशा अलग ही रहते हैं, लेकिन केवल मुझे एग्जैक्टली उनका डिफरेंस मालूम नहीं है, रामानुजाचार्य ने क्या बताया, लेकिन एक द्वैत है, एक विशिष्ट द्वैत है। और उन्होंने इसी बात को स्थापित किया कि जीव और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकते, वो अलग रहते हैं और अलग ही रहेंगे, आज भी बद्ध अवस्था में भी, मुक्त अवस्था में भी, वो डिफरेंट ही रहेंगे। और डिफरेंट रहते उनका जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा और फिर प्रेम उत्पन्न होगा इस तरह से। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सबसे सर्वोत्कृष्ट क्यों है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये भी सही है और वो भी सही है, हमारे और भगवान के अंदर भेद नहीं है, ये भी सही है, और हमारे भगवान के अंदर भेद है ये भी सही है, और ये समझाया कैसे है। भेद नहीं है क्यों, क्योंकि गुण में हम सब लोग सेम हैं, क्वालिटी में सब लोग सेम हैं हम लोग, इसलिए हमारे अंदर भेद नहीं है। और भेद है क्योंकि क्वांटिटी में हम लोग डिफरेंट हैं। जैसे कि समुद्र का जो समुद्र है ना, समुद्र तो समुद्र जो है ना, समुद्र समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो आप एक बूंद भी उठाएंगे तो वो उतना ही खारा रहता है जैसा आप एक बकेट वहाँ से उठाएंगे, है ना। अभी समझो आप इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में तो समुद्र नहीं है, अमेरिका में गए, वहाँ का एक बकेट पानी लिया और यहाँ का एक पानी लिया तो आपको उतना ही सॉल्ट मिलेगा उसके अंदर। लेकिन समुद्र में और वो बकेट में और वो बिंदु में क्या फ़र्क है, क्योंकि बिंदु में और बकेट में हवाई जहाज तो वो बोट नहीं चल सकती है, इतना बड़ा बड़ा मछली नहीं चल सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें समुद्र में है जो बिंदु में नहीं है, कुछ चीज़ें समुद्र में है जो बिंदु में या बकेट में या लोटे में नहीं है जो वहाँ से लिया पानी है। समुद्र के अंदर पहाड़ भी होता है, वो बिंदु के अंदर नहीं हो सकता है। वो जो कैपेसिटी है ना समुद्र की, पहाड़ को भी झेलने की और देव मासा जो होता है ना वेल उसको चलाने की, वो तिमिंगला फिश को चलाने की, वो सब उसके अंदर नहीं होता है। तो समुद्र का जल समुद्र के समान ही है लेकिन डिफरेंट भी है। तो ये जिस तरह सत्य है वैसे ही उन्होंने जीव और भगवान के बीच में बताया कि गुण में भगवान के साथ ही जीव हैं लेकिन मात्रा में वो भगवान से अलग है। अभी गुण समान है लेकिन भगवान के अंदर 64 गुण हैं और जीव के अंदर 50 है, उधर भी फर्क है। वो सारे गुण भगवान में, सारे गुण जीव में हैं, समानता है उसमें, लेकिन असमान भी है साथ में। इसको ही कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आपको समझ में आए? अभी आपके बच्ची ने आपको पूछा भानुप्रिया ने, तो बता सकते हैं उसको आप अचिंत्य भेद अभेद क्या है? नहीं, अगर आपने बताते हुए ठीक से सुना है तो ठीक से बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम ठीक से क्यों नहीं बता सकते किसको? ठीक सुनते नहीं है। पहली प्रक्रिया क्या है हमारे भजन, नवविधा भक्ति की? श्रवण। श्रवण जो करते हैं उसी को हम बोल सकते हैं। अभी वो श्रवण कर रहा है, अभी प्रवाद सुनेगा और से कि कौन सा पुस्तक बीबीटी से कभी आने वाला है, उसका कीमत कितना है, फिर कितना पेमेंट करना है, बराबर बताएगा वो, क्योंकि वो बराबर सुन रहा है उसको, वो उसको इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन सिद्धांत की बात आ गई तो फिर उदय हाँ बोलो, बोलते जाओ ठीक, आपका बोलने का समय आप 12:30 तक बोलो। यही है हर 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 चीज़ जीवन में ना, कोई समझो मुश्किल नहीं है। आप ध्यान देंगे ना बराबर से तो सबको समझ में आएगा, ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आता है। और ध्यान हम उस चीज़ को देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी बोलेंगे कि आपका ना अगले महीने में बिल्कुल इंक्रीमेंट मिलने वाला नहीं है आपको, अगले साल में नो इंक्रीमेंट नो प्रमोशन, लेकिन आप ये करेंगे ना तो 5% चांस है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। सब लोग कहेंगे वो क्या चीज़ है जिससे ना मिलते हुए भी प्रमोशन मिल सकता है। सब लोग ध्यान सुनेंगे, उसके लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट है। समाप्त होगा फोन कि चलता रहेगा अनंत काल तक? मदन मोरे आया ना, एक बहुत महत्वपूर्ण काम लेके आया था। मैंने क्या किया मदन मोरे के साथ, क्या किया? सो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण लगता है उसी को हम ध्यान से सुनते हैं। और अगर आपने बताया कि मैं जो आपको बताऊंगा ना आपको 10 लोगों को बताना है, तो 10 लोग भी ऐसे सुनेंगे कि इसको अकेले को मालूम है और हमको सब सुनना है, वो ऐसे करेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो सब लोग 10 लोग कैसे सुनेंगे? तो हम सब लोगों को ना, अभी सुबह मैंने जो प्रार्थना दिया ना, वो सभी इंद्रियां सबके पास है, आंखें भी सबके पास है, नाक भी सबके पास है, जीवा भी सबके साथ है, लेकिन अधिकतर लोग उन इंद्रियों का उपयोग केवल भोग के लिए करते हैं। इसलिए नर मादी या पुरुष स्त्री का जो संबंध है ना, उसके लिए किसी को सिखाना पड़ता है क्या? कोई कॉलेज है उसका, कोई स्कूल है, कोई डिग्री है, डिप्लोमा कोई है उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए? वो अपने आप लोगों को पता चलता है, वो लोगों को चाहिए ना वो, इसलिए वो अपने आप मालूम पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं, इसको पता ही नहीं, शादी हो गया अभी क्या करने का मालूम ही नहीं इसको, ऐसा कोई नहीं होता दुनिया में। जहाँ हमारा स्वार्थ का होता है ना इंटरेस्ट, वहाँ सब लोगों को बराबर नॉलेज होता है। और सब लोगों को मोबाइल के बारे में कुछ सिखाते हैं, क्लासेस को है क्या मोबाइल का, हाउ टू यूज़ मोबाइल कोई क्लासेस है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कुछ है मार्केट में है क्या कुछ? आप एक साल के बच्चों को तो वो भी बराबर ऐसा ऐसा करके सब देखेगा, बराबर से ऐसा करके देखेगा, क्योंकि उसको इसमें उसको इंटरेस्ट है, इसलिए वो करेगा बराबर से। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रवणम की क्रिया पहले होती है। आदमी गूंगा क्यों होता है मालूम है आपको? क्योंकि उसको कान खराब थे बचपन में। जब आप जन्म लेते हो ना, तो जो कान से अंदर आता है ना, वही आप बोल सकते हो। सृष्टि में ऐसा भगवान ने बनाया, जो आप सुनोगे वही आप बोल सकते हो बाद में। और सुनना पहले होता है, बोलना बाद में होता है। और जिसका कान खराब है, इसलिए अधिकतर लोग बहरे गूंगे साथ में होते हैं। देखो आप कितनी विचार करने की बात है, सोचो आप कितनी विचार करने जैसी बात है। आदमी बहरा गूंगा साथ में होता है कभी, बहुत कम लोग होते हैं खाली गूंगे होते हैं, खाली बहरे होते हैं। अधिकतर लोग गूंगे साथ में बहरे होते, क्योंकि अगर उनका श्रवण यंत्र खराब है, तो सुनाई नहीं पड़ा लाइफ में उनको, तो उनको बोलने को भी नहीं आएगा। जैसे वो लड़के आते हैं ना यहाँ पर, डिप्टी दौली, उसका सारा सिस्टम ही खराब है। कान उसका ठीक है, सब सुनती है बराबर से, लेकिन वो बोलने बजे उसका बोलने का यंत्र खराब है। वो बहुत रेयर केस है ऐसा, वो सब कुछ समझ में आता है उसका। हमारे वार्षवान भी परफेक्ट उसको समझता है क्या चल रहा है वो, लेकिन उसको बोलने की शक्ति नहीं है, उसको सिस्टम ही वैसा बनाया भगवान ने। तो इसलिए जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, वो जब कही जाती है, जैसे कुंवारी लड़की को बताया जा रहा है कि अभी कैसा पक्का विवाह करने के लिए मंत्र बोलना है आपको, तो कैसे मंत्र बोलेगी वो, सुनेंगे कैसे मंत्र को? समझो उसको लगता है कि मुझे हाथ नहीं आने वाला है, तो क्या करेगी वो? समझो आपको बताया जा रहा है, आपको विवाह ही नहीं हो, आपका 40 साल हो गए, अभी आपको एक ऐसा मंत्र दिया जा रहा है, मंत्र उच्चारण करते ही अगले साल शादी होगी आपकी, और आपको डाउट है कि मुझे अभी सुनाएंगे तो याद रहेगा कि नहीं? तो सर सर एक मिनट पहले नोटबुक लेके भाभी बोलाओ, अभी आगे कैसे वर्ड लिखे। तो वो लिखने की जो आपकी क्रिया है, उससे आप क्या साबित कर रहे हो? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भूल नहीं सकती, मुझे याद रखना है, किसी भी हालत में मुझे ये भूलना नहीं है, इसलिए मैं उसको बड़े बड़े अक्षर में लिखूंगा है कि नहीं? तो मैंने आपको पहले प्रश्न क्या पूछा, आपको अचिंत्य विद्या तत्व मालूम है क्या? आपने बोला नहीं मालूम है। फिर मैंने बताया, फिर आप बोले कि नहीं नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने वो ऐसे सुना नहीं उसको। अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट है, आपने पेपर लेके लिखा नहीं कि ये भेद का मतलब क्या है, अभेद का मतलब क्या है, अचिंत्य का मतलब क्या है, एक साथ मिलने का मतलब क्या है, कौन से एग्जाम्पल दिए, वो सब लिख लेते आप ऐसा है। और ये सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, इसी पर हमारा पूरा फिलोसॉफी, पूरी कहानियाँ, पूरी लीला सब डिपेंड है उसके ऊपर। क्योंकि मायावादी व्यक्ति जब सुनता है ना कि राधा कृष्ण ने विवाह किया, रास रचाया, तो वो कैसे सुनेंगे? वो मायावाद में सुनेंगे वो, कि देखो सब भगवान है, सब भगवान नाच रहे हैं, सब भगवान इधर एक रूप हो जाएंगे जब लीला समाप्त हो जाएगी, तो सुनेगा भी वैसे ही वो, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही वो है, उसका जो समझदारी है वो उसी तत्व पे है। और आप सुनोगे चैतन्य महाप्रभु की महालीला या और कोई लीला, तो आपको समझ में आएगा कि देखो एक भगवान है बीच में, सभी उनके जीव है, ये परम सिद्ध जीव हैं, भक्ति में परम पूर्णता प्राप्त करने के बाद में उनके अंदर प्रेम निर्माण हो गया है, और ये प्रेम निर्माण किए हुए जो विभक्त जीव हैं, वो कैसे भगवान से आदान प्रदान करते हैं, वही भाव से आप सुनेंगे। समझ में आपको? तो इसलिए आगे जाकर ना, जैसे गौरांग प्रभु या किसी ने महाराज को एक प्रश्न पूछा, ऐसा दशम स्कंद की लीला में ऐसा कैसा हो सकता है, तो महाराज ने माने क्या उत्तर दिया उसका? महाराज ने कहा, भगवत गीता आपको समझने के लिए है, और भागवत जो है ना दशम स्कंद, वो केवल आनंद लेने के लिए है, उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कैसे कृष्ण ने इतने सारे उदाहरण किए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब जो है ना, ये प्रश्न पूछेंगे तो आपको भागवत में कभी भी आनंद नहीं आएगा, ना समझ में आएगा, ना उसका साक्षात्कार होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता में दिमाग लगाओ, भागवत में मत लगाओ, भागवत खाली सुनो और आनंद लो उसका। हर एक चीज़ ऐसी है ना, अरे 7 साल के बाद ने पर्वत उठाया, अरे कैसे उठा सकते हैं, ऐसे ही आप बोलेंगे ना। अरे 7 साल के बालक ने पूरा सब पर्वत पर्वत खा लिया पूरा, अरे ये सब अच्छी कहानी है, बेकार बकवास की कहानी है। अश्रद्धालु ऐसे बोलेगा, मायावती बोलेगा कि हाँ देखो देखो पर ब्रह्मा कैसे देखो लीला कर रहा है, सब जीव मिलकर लीला कर रहे हैं, सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी उस वही वही हूँ, मैं वही जो मैंने पर्वत उठाया था, ऐसे बोलेंगे। तो ये कौन सा चश्मा पहना है आपने, वो सब वैसा ही दिखा पड़ेगा आपको। अब ही वो मायावती लोग चैतन्य चरितम भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, उनको सब मालूम है, नॉलेज तो जबरदस्त होता है उनका, सारे पुराण वेद सब पढ़ चुके हैं, सब वेद पुराण सब पढ़ चुके हैं, लेकिन हर चीज का जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसका हर चीज का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपको मायावाद के बेस पे देंगे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, और अगर इतने साल भक्ति वाले वातावरण में रह के भी आपको अगर ये पता नहीं होगा तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भले मैं बताऊंगा सुनाऊंगा, सुनते रहेंगे आप, कथा में जाएंगे या सुनेंगे, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। जब तक ABCD आपको समझ में नहीं आता है तब तक आगे का नहीं समझ में आएगा। और ये हमारा सिद्धांत जो है ना बहुत सिंप्लीफाइड है, जो कॉम्प्लिकेशन नहीं कुछ ज़्यादा, इतना सुंदर तरीके से महाप्रभु ने उसको एकत्र किया हुआ है, मायावाद को इसको, दोनों सत्य है अपनी अपनी जगह पर कैसे उसको समझते हुए आगे चलना है, इसी पर उन्होंने अपना पूरा लीला किया है। तो इसमें कोई प्रश्न है आपको भी अचिंत्य वेदाभेद तत्व में? तभी सब लोगों ने येलो पहना है आज।